आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान के साथ बातचीत करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज रियाज में भारत खलीज तआवुन काउंसिल के वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। मुल्क में एमपॉक्स का पहला मुश्तबा मामला सामने आया है, मरीज को अलग थलग रखा गया है। भारतीय मुक्केबाज दीपाली थापा ने अब तक की पहली एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन बन गई हैं। और पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स शानदार रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। भारत ने सोने के 7 तमगे समेत 29 तमगों के साथ अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दोतरफा तआवुन के बहुत से शोबों पर बातचीत करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अन-नहयान भारत के अपने पहले दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनके हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात सरकार के मुतअद्दिद वुज़रा और एक तजारती वफ्द है। अबू धाबी के वलीअहद शेख अन-नहयान एक तजारती फोरम में शिरकत करने के लिए कल मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के सरकर्दा ताजिर हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी तौर पर बेहद करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में इजाफा हुआ है। इनमें सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत भी शामिल है। वलीअहद शहजादे के दौरे से भारत मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मजबूत दोतरफा ताल्लुकात का इयादा होगा और ताजा उभरते हुए मैदानों में शराकतदारी के मजीद मौके पैदा होंगे। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की तिजारत साल 2022-23 में 85 अरब डॉलर को पहुंच गई। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात साल 2022-23 के दौरान चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा बड़ा तिजारती साझेदार बन गया है।
वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज रियाज में भारत खलीजी तआवुन काउंसिल जीसीसी वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस तारीखी मीटिंग का मकसद भारत और खलीजी मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूती देना है। तफसील हमारे नामा निगार से।
जीसीसी वज़राए खारजा की इफ्तिताही मीटिंग में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ सेक्टरों में तआवुन को वसअत देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। खलीजी मुल्कों में तकरीबन 80,90,000 भारत नजाद अफराद रिहायश पजीर हैं, जो बड़े कारोबारी शराकतदार की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये सफारती मीटिंग भारत की खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि डॉ जयशंकर जीसीसी मेंबर मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, ताकि खित्ते में भारत के ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम हासिल हो। डॉ जयशंकर सऊदी अरब के अपने दो रोजा दौरे के पहले दिन रियाज में अहमियत की हामिल सकाफती मकामात का दौरा करेंगे। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस मीटिंग की सदारत करेंगी। जीएसटी काउंसिल की पिछली मीटिंग इस साल जून में मुनक़िद हुई थी, जिसमें काउंसिल ने तमाम स्टील, लोहा और एल्युमिनियम से तैयार करदा दूध के डिब्बे पर 12% जीएसटी की यकसा शरह आयद करने की सिफारिश की थी। काउंसिल ने यह भी सिफारिश की थी कि भारतीय रेलवेज के जरिए आम आदमी को फराहम की जाने वाली खिदमात पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इन खिदमात में प्लेटफार्म टिकट्स की फरोख्त, आराम करने के कमरे, वेटिंग रूम और बैटरी से चलने वाली कार सर्विस शामिल है। सितंबर के पहले हफ्ते में गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारत की असासा मार्केट्स में तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। अदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों एफपीआईज ने शेयर मार्केट में 10,978 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट्स में 367 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। इस तरह इस महीने भारत की असासा मार्केट्स में ये सरमायाकारी 11,345 करोड़ रुपए हो गई है। ये सरमायाकारी भारतीय बाजारों में मुसलसल 3 महीनों की मजमुई सरमायाकारी के बाद हुई है। इस साल अब तक गैर मुल्की सरमायाकारों ने भारतीय असासा मार्केट में 1.6 लाख करोड़ रुपए की मजमुई सरमायाकारी की है। 2024 में अब तक की गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों एफपीआईज ने शेयर मार्केट में 53,859 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट में 1,09,274 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। हाल ही में बैरून मुल्क का सफर करने वाले एक नौजवान शख्स की शिनाख्त एमपॉक्स के मुश्तबा मरीज के तौर पर की गई है। वजारत सेहत ने बताया है कि मुश्तबा मरीज को एक मखसूस अस्पताल में अलग थलग रखा गया है और उसके एमपॉक्स से मुतासिर होने की तस्दीक के लिए नमूनों की जांच की जा रही है। वजारत ने कहा है कि मरीज की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। वजारत ने मजीद कहा है कि इस शख्स की देखभाल एमपॉक्स के लिए मुकर्ररा जाब्तों के तहत की जा रही है और उसके रास्ते में आने वाले अफराद का भी पता लगाया जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर इसके असरात का जायजा लिया जा सके। वजारत ने यकीन दिलाया है कि मुल्क इस तरह के सफर से वाबस्ता मामले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और मुल्क के पास इसके बंदोबस्त नीज किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुस्तहकम इंतजाम हैं। योगी आदित्यनाथ की सरबराही वाली उत्तर प्रदेश सरकार 11 से 13 सितंबर के दौरान ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा। एसईएमआई, मेसेओ मैनेजियन इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से मुनाकिदा इस प्रोग्राम का मकसद भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को तरक्की देना और भारत को एक अहम आलमी मुसाबकती मुल्क के तौर पर कायम करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। कांग्रेस ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए मजीद 9 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने साबिक मेंबर पार्लियामेंट ब्रजेंद्र सिंह को जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उचाना कलान असेंबली सीट से टिकट दिया है। मोहित ग्रोवर गुरुग्राम सीट से इंतखाब लड़ेंगे। इससे पहले पार्टी ने 90 रुकनी रियासती असेंबली के लिए 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। हरियाणा में अगले महीने की 5 तारीख को चुनाव होंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव आज लाडली बहना और सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीमों के मुस्तफिदीन को रकूमात तकसीम करेंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
वजीर आला डॉ मोहन यादव सागर जिले के बीना में मुनाकिदा रियासती सतह के एक प्रोग्राम में लाडली बहना स्कीम के 1,29,00,000 मुस्तफिदीन के खातों में 1,574 करोड़ रूपये की रकम मुंतकिल करेंगे। डॉक्टर यादव सोशल सिक्योरिटी पेंशन के मुस्तफिदीन को भी तकरीबन 332 करोड़ रूपये फराहम करेंगे। वजीर आला भूमि पूजन करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि लाडली बहरा स्कीम के तहत अब तक तकरीबन 24,499 करोड़ रूपये जबकि सोशल सिक्योरिटी पेंशन के मुस्तफिदीन को 3,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम फराहम की जा चुकी है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 114वां नशरिया होगा। प्रोग्राम के लिए सामईन अपनी राय और तजावीज टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा सामईन 1922 पर मिस कॉल देकर SMS पर मौसूल होने वाले लिंक के जरिए अपनी तजावीज बराए रास भेज सकते हैं। सामईन नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के जरिए भी अपनी तजावीज ऑनलाइन भेज सकते हैं। इस नशरे के लिए तजावीज इस महीने की 27 तारीख तक भेजी जा सकती हैं। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जारी हिस्से के तौर पर अब तक तकरीबन 1,79,00,000 सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं। पोषण माह जो 1 सितंबर को शुरू हुआ है इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। एक माह तवील ये मुहिम मुल्क में बेहतर हुक्मरानी के लिए टेक्नोलॉजी के साथ एनीमिया, बच्चों की नशोनुमा की निगरानी, दूध पिलाने का अमल और पोषण भी पढ़ाई भी जैसे कलीदी मौजूदात पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुजरात से शुरू की गई थी। हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आज से दिल्ली में फौज की 3 शाखों के अफसरान के लिए पहला मुश्तरक फौजी कार्रवाई जायजा اور قدر پیمائی پروگرام کا انعقاد کرے گا۔ 5 روزہ ترقیاتی اور تعارفی پروگرام فوج کی تینوں شاخوں کے میجر جنرل اور اس کے مساوی افسران کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع، وزارت خارجہ اور وزیر داخلہ کے افسران کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں اسٹریٹجک منصوبہ بندی، مستقبل کے خطرات، چیلنجوں اور تنازعات کے لیے مناسب اندازہ لگانا اور اس کی تیاری شامل ہوگی۔ بھارتی حکومت کی سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت چنتن شیور عنوان کے تحت ایک 2 روزہ قومی جائزہ کانفرنس منعقد کرے گی، جو آج سے اتر پردیش کے شہر آگرہ میں شروع ہوگی۔ اس کانفرنس کا مقصد سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سماجی انصاف اور سماجی بہبود کے محکموں کے وزارتوں اور دیگر کلیدی متعلقہ فریقوں کو ایک ساتھ لانا ہے، تاکہ ان مختلف اسکیموں اور پالیسیوں کے نفاذ پر تبادلہ خیال کیا جا سکے، جن کا مقصد ملک بھر میں حاشیے پر رہنے والے افراد کی ترقی ہے۔ اس چنتن شیور کی صدارت سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی مرکزی وزیر ڈاکٹر ویرندر کمار کریں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مغربی وسطی اور شمال مغربی بنگال میں متصل علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کا جو حلقہ بن گیا تھا، اس کے آج دوپہر تک پوری کے نزدیک اڈیشا کے ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد یہ چھتیس گڑھ اور اڈیشا کے حصوں کی جانب بڑھ جائے گا۔ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی آندھرا پردیش، یانم اور اڈیشا کے لیے موسلادھار بارش کے تعلق سے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے تلنگانہ، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، چھتیس گڑھ اور ودربھ کے حصوں میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ پیرس پیرالمپکس 2024 کی اختتامی تقریب گزشتہ رات فرانس کی راجدھانی میں شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہو گئی۔ بھارتی دستے نے اس سال پیرالمپکس میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے ساتھ چاندی کے 9 اور کانسے کے 13 تمغوں سمیت کل 29 تمغے حاصل کیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
بھاری بارش کے باوجود اسٹیٹ ڈی فرانس میں فرانسیسی الیکٹرانک موسیقی کے 24 فنکاروں نے پوری دنیا سے آئے ہوئے 4,400 ایتھلیٹس اور 168 پیرالمپک وفد کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے سما باندھ دیا۔ یہ تقریب کئی گھنٹوں پر مشتمل تھی، جس میں 20 ڈی جے اور 76 سالہ فرانسیسی الیکٹرانک موسیقی کے علم بردار جین مارشل جیرے نے متعارف کرایا۔ ایشوریا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسد اللہ۔
بھارت کی مکے باز دیپالی تھاپا نے متحدہ عرب امارات کے العین میں پہلی ایشیائی اسکول گرل چیمپئن بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ ان کی اس کامیابی سے ایشین چیمپئن شپ میں بھارت کو خواتین کے 7 خطاب حاصل ہوئے۔ 33 کلو گرام وزن کے زمرے میں تھاپا نے کل فائنل مقابلے میں یوکرین کی کھلاڑی کو شکست دی۔ 35 کلو گرام کے زمرے میں بھومی نے قزاقستان کے اصل جلمیکووا کو فائنل میں شکست دے کر بھارت کے لیے دوسرا خطاب حاصل کیا۔ نشچل شرما فائنل میں ایک سخت مقابلے میں یوکرین کی ماریا متسوریا کو 37 کلو گرام کے زمرے میں شکست دے کر تیسرا خطاب حاصل کیا اور بھارت کے لیے جیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ 3 خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان کا دلی پہنچنے پر والہانہ استقبال ہونے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ اخبار تحریر کرتا ہے کہ جناب النہیان کے 2 روزہ قیام کے دوران توانائی اور کنیکٹیویٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو پہلی خبر بنایا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر میں دہشت گردی کی سرپرستی بند کرے گا، تبھی بھارت اس کے ساتھ بات چیت شروع کرے گا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال برکس سمٹ کے لیے اس ہفتے روس کا دورہ کریں گے۔
خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ریاض میں بھارت خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کی پہلی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نئی دلی میں جی ایس ٹی کونسل کی 54ویں میٹنگ کی صدارت کریں گی۔ ملک میں ایم پاکس کا پہلا مشتبہ معاملہ سامنے آیا ہے، مریض کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ بھارتی مکے باز دیپالی تھاپا اب تک کی پہلی ایشین اسکول گرل چیمپئن شپ بن گئی ہے اور پیرس پیرالمپکس گیم شاندار رنگا رنگ تقریب کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔